ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कई ड्रोन को मार गिराया। दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए आईटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एयर रेड अलर्ट सायरन का परीक्षण किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गईं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली से लैंसडाउन उत्तराखंड तक की एडवेंचर राइड के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मई से शुरू होगा। और दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान के दौरान 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। पाकिस्तान ने कल रात करीब 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लेह से सरक्रीक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोनों को मार गिराया। नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने समूची पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलाबारी की।
7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है।
उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का लक्ष्य वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी हासिल करना था। उन्होंने कहा कि ड्रोनों के मलबे के फॉरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की में बने थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर दागे गए और इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एजी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए गोले बरसाए, जिनमें कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए। बैठक में रक्षा सचिव आर के सिंह भी मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 सदस्य देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के अपने संप्रभु अधिकार की पुष्टि की है और साथ ही संयम तथा कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश को सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी कहा कि भारत के पास अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उचित कारण है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हुए ये स्पष्ट किया कि वो सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि उनका देश भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भारत के स्वयं की रक्षा करने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय के रिपोर्टिंग न करने को कहा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार फैलाने के लिए कई झूठे और भ्रामक खबरों का सहारा ले रहा है, इसलिए ऐसे समय में हर जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है, जो विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या फिर मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई जानकारी हो, तो आपको इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को अवश्य देनी चाहिए। आप ऐसी जानकारी को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर साझा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए आज ITO स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एयर रेड अलर्ट सायरन का परीक्षण किया गया। ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य तनाव को देखते हुए उठाया गया है, जिसके अंतर्गत राजधानी की ऊंची इमारतों पर सायरन लगाए जाएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजधानी में सायरन लगाने की यह योजना नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है। दिल्ली सरकार आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया जाए और नागरिकों को समय पर सही दिशा निर्देश मिल सके। आपात स्थिति में यह सायरन चेतावनी देने का काम करेंगे। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि शहर की सभी प्रमुख बहुमंजिला इमारतों पर 40 से 50 एयर रेड अलर्ट सायरन लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह सायरन करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है।
दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में लगने शुरू होंगे। ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे।
सभी सायरनों को एक केंद्रीय कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाएगा और इनका संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन होगा। किसी भी आपात स्थिति में ये सायरन 5 मिनट तक बजाए जाएंगे, जिससे लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गईं। इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय आगमन, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान, 63 घरेलू आगमन और 66 घरेलू प्रस्थान शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एयरलाइन से उड़ान की अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी लें। आज जारी परामर्श में दिल्ली विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानों के सुगम संचालन के लिए यात्रियों को सुरक्षा तथा एयरलाइन कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान हालात और आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के कारण ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में लैंसडाउन उत्तराखंड तक की एडवेंचर राइड के दूसरे चरण बाइक का जुनून, देवभूमि का सुकून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस राइड का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि यात्रा केवल साहसिक राइड नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने टीम वर्क, अनुशासन और नागरिक कर्तव्य की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। इस राइड के दौरान बाइकर्स न केवल वृक्षारोपण करेंगे बल्कि स्थानीय समुदायों से जुड़कर सामाजिक संदेश भी फैलाएंगे। दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव ने आज दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दक्षिणी जोन के खानपुर वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान खानपुर वार्ड के मुख्य क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। श्री यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और संकल्प को पूरी तरह से साकार करेंगे और दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा शहर बनाएंगे। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने मेहरोली बदरपुर रोड के पास कॉलोनी का दौरा किया और पाया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के कारण मुख्य नाला अवरुद्ध हो गया है। श्री यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक सप्ताह के भीतर नाले की मरम्मत करवाएं ताकि मानसून के मौसम में जल भराव को रोका जा सके। उन्होंने पार्क में सफाई और बागवानी की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मई से शुरू होगा। इस दो दिवसीय सत्र में दिल्ली के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। इनमें शिक्षा से संबंधित विधेयक और मानसून के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विशेष सत्र में प्राइवेट स्कूल फीस बिल पेश किया जा सकता है जो स्कूलों द्वारा अनुचित फीस वृद्धि को नियंत्रित करेगा। वहीं आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पास किए जाने की उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज कहा कि देश में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजारों में भरपूर मात्रा में सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं और सरकार के पास भी पर्याप्त भंडार है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान के दौरान 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिम जिले में ऑपरेशन फेस वॉश नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करना है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों को दिल्ली के आजादपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे एजेंटों की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे थे। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को आनंद विहार इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। श्री धानिया ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान श्री नड्डा को देश भर में स्वास्थ्य प्रणालियों और संसाधनों को मजबूत करने के लिए उठाए गए तत्काल और व्यापक उपायों के बारे में जानकारी दी गई। मौसम। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेले गए निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम के युवा वर्ग में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शाम्भी श्रवण क्षीरसागर ने स्वर्ण पदक जीता। एक रिपोर्ट।
10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश मानी और शाम्भवी शरण क्षीरसागर ने स्वर्ण पदक जीता। इस संस्करण में निशानेबाजी में शाम्भवी का ये दूसरा पदक है। कर्नाटक के हृदय श्री कोंडूर और नरेंद्र प्रणव ने रजत पदक जीता जबकि बिहार के दिव्याश्री और रुद्र प्रताप सिंह ने कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी में ये बिहार का पहला पदक है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कई ड्रोनों को मार गिराया। दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए आईटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एयर रेड अलर्ट सायरन का परीक्षण किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गई और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली से लैंसडाउन उत्तराखंड तक के एडवेंचर राइड के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।